विलाप एक लंबी और ऊंची पुकार है जो एक ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर तक पहुंचती है जो बर्दाश्त से बाहर दर्द या हानि को सहन करता है। आप अय्यूब की पुस्तक और भजन संहिता में विलाप की भावना को देखते हैं, और परमेश्वर ने हमें बाइबल की एक पूरी पुस्तक दी है जिसे विलाप गीत कहा जाता है, जो यरूशलेम के विनाश के परिणाम स्वरूप होने वाली दुख और शोक की अत्यंत विस्तार से वर्णन करती है। विलाप गीत टूटे हुए हृदय की पुकार है। यह शोक मनाने वाले सभी लोगों के लिए परमेश्वर का उपहार है। 17:24 आंसू। अपनी बाइबल में विलाप गीत 3 खोले। राख से धुआं अभी भी उठ रहा था जब यर्मिया ने अपना रास्ता मलबे के ढेर के बीच से होते हुए बनाया, जो एक समय में महान नगर हुआ करता था, और उसे देखकर उसका दिल टूट गया। वो नगर जो कभी परमेश्वर के आशीर्वाद से फला फूला था, अब एक बूताहा नगर जैसा लग रहा था। जो नगरी लोगों से भरपूर थी, वो अब कैसी अकेली बैठी हुई है। इस कठिन समय में यर्मिया के पास परमेश्वर का मुखपात्र बनने का अविश्वसनीय कार्य था। उसकी सेवकाई युवा राजा योशिया के शासनकाल के दौरान शुरू हुई, जिसने धार्मिक और नैतिक सुधार के अभियान का नेतृत्व किया। परंतु योशिया के बेटे यहोयाकीम ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने परमेश्वर का वचन उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहा, फिर उसने चाकू से सूची पात्र को काट दिया और पवित्र शास्त्र को आग में फेंक दिया। बाइबल जलाने वाले इस राजा के शासनकाल के दौरान ही परमेश्वर का अपने लोगों पर प्रलय शुरू हुआ। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को घेर लिया, और जब लोग अपने नगर की रक्षा करने में बहुत कमजोर हो गए तो उसकी सेना ने सबसे प्रतिभाशाली लोगों को पकड़ लिया, जिनमें दानियल नामक एक युवक भी शामिल था, जिसकी कहानी हम बाद में देखेंगे, और उन्हें बेबीलोन निर्वासित कर दिया। परमेश्वर के लोगों ने 5 आपदाओं को सहन किया, एक के ऊपर एक। शत्रुओं ने नगर को घेर लिया, लोग भूख से मर रहे थे, नगर गिर गया, फिर उस पर कब्जा कर लिया गया और मंदिर नष्ट कर दिया गया। जो बच गए उन्होंने अपने घर खो दिए, और उनमें से कई लोगों ने अपने बच्चे भी खो दिए। घेराबंदी में भूख के कारण सबसे पहले सबसे कम उम्र वालों की मौत हुई होगी, और जब नगर ढह गया तो जिन लोगों के बड़े बच्चे थे उन्हें अपने बेटों और बेटियों को निर्वासन में जाते हुए देखने का बड़ा दर्द सहना पड़ा, यह जानते हुए कि वे उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। उसके बाल बच्चों को शत्रु हांक हांक कर बंधुआई में ले गए। उनका दुख अत्यधिक रहा होगा। शोक किसी चीज या किसी प्रिय व्यक्ति के खोने से उबरने की दर्दनाक प्रतिक्रिया है। यह उस कार्य या पद का खोना हो सकता है जिसने आपको बड़ी संतुष्टि प्रदान करी होगी। यह किसी चीज को पूरा करने की शारीरिक क्षमता या मानसिक चुस्ती को खोने जैसा हो सकता है जिसका आप आनंद लेते थे, या यह किसी प्रिय व्यक्ति को खोने जैसा भी हो सकता है जिसके बिना जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। विलाप गीत आंसुओं से भीगी हुई पुस्तक है। रात को वो फूट फूट कर रोती है, उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांतिदाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था वो मुझसे दूर हो गया। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। पूरी पुस्तक में आंसुओं का संदर्भ लगातार जारी रहता है। आंसू आत्मा की पीड़ा पर शरीर की कपकपी है। ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, क्योंकि ये आपके दर्द को कम करने का काम करते हैं। परमेश्वर ने आपको एक उद्धारकर्ता दिया है जो आंसू बहने का दर्द जानता है, इसलिए अपने आंसुओं को बहने दे और उन्हें रोके नहीं। विलाप गीत दुख को शब्दों में व्यक्त करता है और ये दर्शाता है कि कैसे दुखी लोग अपने खोने के हर विवरण को व्यक्त करते हैं। सहायता आपके दुख के अंधेरे कोनों का सामना करने से और उसे आपसे प्रेम करने वाले लोगों की संगति में परमेश्वर की उपचारात्मक उपस्थिति के प्रकाश में लाने से मिलती है। विलाप गीत में पीड़ित हुए लोग यह मानते थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब उन लोगों ने कष्ट झेला तो उन्होंने यह नहीं कहा, इसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। उन लोगों ने कहा, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। यह विश्वास करना कि परमेश्वर सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं उन कठिन सवालों को उठाता है जिनके हम उत्तर नहीं दे सकते। जब हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पर कष्ट सहना पड़ा तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्यों? और यहां तक उनके लिए भी स्वर्ग मौन था। जब आपकी आत्मा से विलाप में क्यों उठता है तो याद रखे कि यीशु वहां रहे हैं और उन्हें भी उत्तर दिए बिना पिता पर भरोसा करना पड़ा था। तो आपको परमेश्वर के प्रति जो शिकायत महसूस हो सकती है उससे आप क्या कर सकते हैं? विलाप गीत 3 में परमेश्वर के विरुद्ध 19 शिकायतें या आपत्तियां है। ध्यान दे कि परमेश्वर का संदर्भ देते हुए वह शब्द को बार बार उपयोग किया गया है। वह मेरे चारों ओर बारा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। वह मुझे कठिन दुख से भर दिया है। यह सिर्फ इतना ही नहीं कि परमेश्वर ने इन चीजों की अनुमति दी है, बल्कि यहां तक कि परमेश्वर ने उन्हें किया है, वह उन्हें लेकर आया है। परमेश्वर के प्रति शिकायत अविश्वास की अभिव्यक्ति नहीं है। एक गहन तरीके से यह विश्वास की अभिव्यक्ति हो सकती है। जिन लोगों ने विलाप गीत में परमेश्वर के विरुद्ध इतनी सारी शिकायतें उठाई, वे इसमें विश्वास नहीं करते थे कि जो कुछ भी उन्हें सहना पड़ रहा है वह संयोग से हुआ है। वे जानते थे कि परमेश्वर सभी चीजों में सर्वाधिकारी है, जिसमें उन पर आई आपदा भी शामिल है। यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि वे इस पर विश्वास करते थे कि वे परमेश्वर के प्रति शिकायत से जूझते थे। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको भी इसी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। आप स्वयं को घोर अंधकार में पा सकते हैं। आप फंसा हुआ, बोझिल, भयभीत और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। और आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे कि परमेश्वर आपके खिलाफ हो गए हैं। विलाप गीत से पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी शिकायत उनके पास ले जाए। कोई मित्र या पादरी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप परमेश्वर को सच बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर के पीठ पीछे उनके बारे में शिकायत मत करें। उन्हें अपनी शिकायत आमने सामने बताए। अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से बेहतर कोई जगह नहीं है। शोक के बारे में लिखी गई एक पुस्तक में आप स्वर्ग की आशा के बारे में बहुत कुछ पाने की उम्मीद कर सकते हैं, परंतु विलाप गीत में स्वर्ग के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऐसा क्यों? परमेश्वर के परम उद्देश्य की पूर्ति बहुत अद्भुत है, परंतु स्वर्ग एक दुखी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली दर्दनाक वास्तविकता से बहुत दूर लग सकता है। जब आप शोक मनाते हैं तो आपका पहला प्रश्न होता है, मैं आज का दिन कैसे काटूंगा? स्वर्ग उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, परमेश्वर की दया है। परंतु मैं यह स्मरण करता हूं और इसीलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। परमेश्वर की दया आपको आज के दिन से उबरने के लिए पर्याप्त होगी, और जब आप कल सुबह उठेंगे तो उनका प्रेम और दया आपका इंतजार कर रही होगी। मसीह आपको शक्ति देंगे जिसकी आपको जरूरत है, ताकि आप किसी भी समय उठाए गए भार से मुकाबला कर सके। एक दुखी व्यक्ति के मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है कि मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए है, जब उन्होंने मेरे जीवन में इतना दर्द लाया है। इस प्रश्न का उत्तर उस पुरुष में निहित है जिसका परिचय हमें विलाप गीत 3 में दिया गया है। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूं। यह व्यक्ति कौन है? विलाप गीत में यह पुरुष स्पष्ट रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशा करता है। उस पुरुष ने कहा, और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। और गतसमी के बगीचे में यीशु ने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। उस पुरुष ने कहा, सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढाल कर गीत गाते हैं। और यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। उस पुरुष ने कहा, वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं अंधियारे ही में चलाता है। और जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए, उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। उस पुरुष ने कहा, मैं चिल्ला चिल्ला के दोहाई देता हूं, तो भी वो मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। और क्रूस पर यीशु ने चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह कितना असाधारण है कि जब पोंतियस प्लातुस ने यीशु को कांटों के मुकुट के साथ भीड़ के सामने प्रदर्शित किया, तो उसने कहा, देखो यह पुरुष। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह ऐसा कहकर विलाप की 3 को पूरा कर रहे थे। यीशु वो आदर्शित पुरुष है जिसकी प्रतीक्षा विलाप गीत में की गई है। परमेश्वर का पुत्र दुख का मनुष्य बन गया और रोग से उसकी जान पहचान थी। क्योंकि यीशु ने कष्ट सहा है, इसलिए जब हम कष्ट उठाते हैं तो वे हमारी सहायता करने में सक्षम होते हैं। एक पीड़ित दुनिया को एक पीड़ित उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, परंतु हमें एक ऐसे उद्धारकर्ता की भी आवश्यकता है जिसने पीड़ा पर विजय प्राप्त की हो। यीशु के लिए पीड़ा अंत नहीं थी, वे इससे गुजरे और अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस पर विजय प्राप्त की। और ये उद्धारकर्ता स्वयं को आपके सामने प्रस्तुत करता है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा और एक दिन परमेश्वर आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देंगे। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। जब आप दुख और हानि की घाटी से गुजरते हैं, तो आप एक ऐसे स्थान पर होते हैं जहां मसीह को पाया जा सकता है। उद्धारकर्ता जानता है कि दुख के मार्ग पर चलना क्या होता है और वे दुख से अच्छी तरह अवगत है। कोई भी मार्ग जिस पर आप यीशु के करीब आते हैं, उसे आशीषित किया जाएगा, भले ही ये एक ऐसा रास्ता हो जिस पर चलना आपने कभी नहीं चुना होगा।